अभी इस जन्माष्टमी से हम अभी कुछ दिनों के लिए गीता का एक चैप्टर आपके सामने रखेंगे, चैप्टर 13, 13वां चैप्टर। आप सबको गीता बहुत प्रिय है, जिसे भगवत गीता भी कहते हैं। महाभारत के भीष्म पर्व का एक पाठ है गीता, जिसमें कृष्ण और अर्जुन की डायलॉग है, संवाद है। जीवन के हर डायमेंशन के ऊपर, जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं लाइफ के, उन सब के ऊपर बहुत डीपली फिलोसॉफिकली प्रैक्टिकली बहुत डिस्कशंस हैं, और आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। उन्हीं में से एक 13वां चैप्टर है, जिसको हम थोड़ी देर के लिए, उसमें 37 करीब श्लोक हैं, इसकी चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। तो उससे पहले जो एक दो श्लोक आज बोलेंगे, आप मेरे साथ मिलके श्लोक को बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा, फिर बाद में आप सब मिलकर के बोलिएगा। बोलिए। श्री भगवान वाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। खुल के बोलिए। सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं क्षेत्रय यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। पहला श्लोक है, दोबारा मेरे साथ बोलेंगे। श्री भगवान वाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। हे कौन्तेय, सन ऑफ कुंती, कृष्ण अर्जुन का संवाद है, तो कृष्ण उपदेश करते हैं। दिस बॉडी, इदम शरीरम, इज कॉल्ड फील्ड, एंड एतत् यो वेत्ति एंड हु नोज दिस बॉडी इज कॉल्ड द नोअर ऑफ फील्ड, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र हिंदी में खेत बोलते हैं, जहां खेती करते हैं, गेहूं उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, चावल उगाते हैं, उसे खेत कहते हैं। और जो खेत को समझता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हमारे जीवन में अलग अलग तरह के जगह से दुख आते हैं, सुख भी आते हैं। दुखों के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, अलग अलग कारणों से होते हैं। कभी बाहरी दुनिया के कारण, कभी शरीर के कारण, कभी अंदर मेंटली प्रॉब्लम है, कभी जॉब में प्रॉब्लम है, कभी घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कभी न्यूज देख कर, कभी कुछ बाहर दुनिया में क्या होता है, तो दुख बहुत तरह के दुख हमें होते हैं और उनकी उनके लेवल भी कम बहुत होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। पर जो दुखों की एक चीज कॉमन है कि सभी दुखों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेवारी है, वो स्वयं की है, वो खुद की है, वो सेल्फ की है। पर ज्यादातर हम ऐसा नहीं मान पाते, हम अपने हर दुख के लिए कोई ना कोई जिम्मेवार बाहर का आदमी को बना रखा है। मेरी बीवी मेरे दुखों की जिम्मेवार है, मेरा पति मेरे दुखों का जिम्मेवार है, मेरे बच्चे मेरे लाइफ को खराब कर रखे हैं, मेरा पड़ोसी मेरे दुख की जिम्मेवार है, ये सोसाइटी के कारण मैं दुखी हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब हम बहुत हद तक जाते हैं तो फिर हमें जो दुख बहुत ज्यादा लिमिटेशन से पार चले जाते हैं, हमें कोई दिखता नहीं, ये नहीं दिखता, वो नहीं दिखता, तो भगवान सारे दुखों की जिम्मेदार है, परमात्मा सब दुखों की जिम्मेदार है। अगर दुनिया इतना दुखमय है और हमारे जीवन में सचमुच बहुत सारे दुख सुख लगे रहते हैं, और अगर ईश्वर ने ये सारा दुख दिया है या बनाया है हमारे लिए, तो वो ईश्वर तो शैतान से कोई कम है नहीं है, बड़ा सैडिस्टिक है, जिसको मजा आता है दूसरे तड़पे, उसको तड़प को देख करके वो एंजॉय करता है। अगर सचमुच ईश्वर ने आपको हमें दुख दिया है वह देता रहता है, दुनिया में जो दुख होता रहता है अगर ईश्वर उसका कारण है, फिर ऐसा ईश्वर तो बहुत ही साइकोलॉजिकली बहुत सिक है, बीमार है, जो दूसरों की दुखों से मजा लेता है। ऐसा ईश्वर किसी को नहीं चाहिए होता है। तो जब तक मैं दूसरों को मेरे दुखों के लिए ब्लेम करता रहता हूं, यकीन मानिए तब तक कभी भी दुख का इलाज नहीं होता है। क्योंकि वंस यू डिसाइडेड दैट ऑल माय प्रॉब्लम्स पेन्स आर बिकॉज ऑफ अदर्स, इट मे बी नेबरहुड, इट मे बी माय वाइफ और हस्बैंड और चिल्ड्रन और सोसाइटी और गॉड, एनीथिंग, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। फिर भाई दुख तो दूसरे के कारण है, आप उसको कैसे क्या करोगे? आप थोड़ी सोसाइटी को ठीक कर सकते हो, इतनी बड़ी आप थोड़े नेबरहुड के घर के ठीक कर सकते हो, आप थोड़ी हवा को ठीक कर सकते हो। तो इसीलिए हमारे लाइफ में ज्यादातर सब कुछ होने पर भी, सब कुछ का मतलब जो हम अचीव करना चाहते हैं वो सब कुछ हमारे पास होने पर भी हम उतने ही दुखी मिलते हैं जितना जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो गरीब है, अनपढ़ है, वो भी उतना ही दुखी हुए जीवन में जितना एक पढ़ा लिखा आदमी, जितना एक खूब पैसे वाला व्यक्ति दुखी है। तो ना पैसे से हम दुख को कम कर पाते हैं, ना नॉलेज से दुख को कम कर पाते हैं। उसका कारण है कि वो गरीब हो या धनी हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, दोनों सब मानते हैं, जो भी मानता है, कि मेरा दुख का कारण दूसरे लोग हैं। क्योंकि आप दूसरों का कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आपको तो दुख भोगना ही पड़ता है। और अगर सचमुच हम मानते हैं परमात्मा हमारे दुखों के कारण है, फिर तो कोई इलाज ही नहीं, आप परमात्मा का क्या बिगाड़ोगे? वो तो आपसे ज्यादा ताकतवर है। पर हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने दुखों की निवृत्ति के लिए, दुख दूर हो उसके लिए बहुत सारे रिसर्च किया, अनुसंधान किया, सर्च किया, फाइंडिंग किया, ढूंढा कहां पर दुखों का जड़ है। ये जो दुखों के जड़ ढूंढने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम धर्म कहते हैं, खास करके जिसको हम ईस्टर्न रिलीजियंस मानते हैं। भारत में धर्म का जो उदय हुआ वो इसीलिए नहीं हुआ कि हमें अच्छा बनना है व अच्छा दिखना है, इसीलिए कि मेरे अंदर जो दुख है उसका कारण क्या है, और कारण को आपने ढूंढ लिया तो निवृत्ति बड़ी आसानी है। डॉक्टर वो बड़ा नहीं है जो बहुत सारे दवाइयां देता है, डॉक्टर वो अच्छा है जो बीमारी को पहचान जाता है, जितना जल्दी डायग्नोसिस कर ले उतना बढ़िया डॉक्टर होता है। बीमारी पता लग जाए इलाज आसान होता है, कभी कभी तो इतनी आसान है कि आपको $5 में दवाइयां होती है, पर बीमारी क्या है पता लगाने के लिए आपको $5,000 खर्च करने पड़ते हैं। यह सिर्फ आपके मेडिकल में नहीं होता है, मेडिकल साइंस, वो आपके रियल लाइफ में भी होता है। आपके घर में जो लड़ाइयां होती है, हमारे घर में जो दुख है, वो दुख का हम सब ढूंढते हैं, पति भी ढूंढता है, पत्नी भी ढूंढती है, बच्चे भी ढूंढते हैं, क्यों हमारे घर में, जिसके भी घर में अशांति है, हम दुख का इलाज ढूंढते हैं, क्या करें, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं दुखों के इलाज ढूंढने के लिए। पर अगर हम कभी दुख का कारण ढूंढ ले, उसका कॉज कहां पर है, तो फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो तो आसान है इलाज करना। दुखों का कारण हम कभी ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि दुख का कारण मेरे अलावा बाकी सब में है, पर इन रियलिटी शास्त्र कहता है कि सारे दुखों का कारण तुम खुद हो, तुम खुद ही उसके जिम्मेवार हो। और जिस दिन व्यक्ति को एहसास हो जाए कि मेरी समस्या का जड़ मेरे में है, तो फिर ध्यान रखिएगा इलाज बड़ा आसान है। अगर मैं ही जिम्मेवार हूं तो इट्स वेरी इजी टू ट्रांसफॉर्म इट, क्योंकि इट्स इन माय हैंड। मुझे अपने बारे में क्या करना है वो मैं खुद कर सकता हूं। मैं बच्चों को बदल नहीं सकता, पति को बदल नहीं सकता, पत्नी को बदल नहीं सकता, पड़ोसी को बदल नहीं सकता, बदल सकूं भी बड़ा मेहनत का काम है बड़ा, पर मैं खुद को बदल सकता हूं, वो मेरे हाथ में है, उसके लिए मैं इंडिपेंडेंट हूं। और मुझे अगर पता चले कि जड़ मेरे अंदर है, मैं ही जिम्मेवार हूं, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं, तो फिर मेरे जीवन में सुख आना आसान हो जाता है। और जिस दिन व्यक्ति ये फिक्स कर लेता है कि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेवारी है मेरे दुखों का, उस दिन दुख तो छोड़िए, उसके लाइफ में ही रिवोल्यूशन होता है, उसके लाइफ में क्रांति आती है, बदलाव आता है, उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो अनोइंगली उसके लाइफ के अंदर वो रूपांतर हो जाता है, जीवन बदलने लगता है। बस ये फिक्स करने की जरूरत है कि जिम्मेवारी मेरे अंदर है। ये श्लोक आपको उसी और थोड़ी बहुत इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे दुखों के या सुखों का जड़ कहां है, कहां पर प्रॉब्लम है। कहता है कि ये जो शरीर है ये द फील्ड ऑफ एक्टिविटी है। जब आप खेत होता है, जमीन होता है, आप उसमें धान उगाओ, फुटबॉल खेलो, सॉकर खेलो, घर बनाओ, वो एक्टिविटी का फील्ड है। इसी तरह हमारा शरीर हमारी एक्टिविटीज के लिए एक फील्ड है, उसके अंदर हम बहुत कुछ करते हैं उस बॉडी के साथ। पर जो करता है इट इज समवन एल्स, वो कोई दूसरा है। मुझे जब भूख लगता है तो मैं कहता हूं मुझे भूख लगता है। भूख आपके पेट में लगता है जो आपके ब्रेन में आपको बेल बजाता है। पर क्योंकि पेट के साथ मैं अपने आप को तादात्म्य कर रखा हूं, तादात्म्य मतलब मैं इन दोनों को मिला रखा हूं, दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता हूं, कोई डिफरेंस नहीं कर पाता हूं, इसलिए मुझे ये रियलाइज होता है कि मुझे भूख लगता है। पर भूख पेट में होता है, खाली होने पर ब्रेन में और ये जो पेट है या ब्रेन है, ऑल आर द पार्ट ऑफ बॉडी। मुझे प्यास लगता है, मेरे पैर में जब दर्द होता है तो मुझे लगता है कि मुझे दर्द होता है। इसका मतलब मैं पैर के साथ खुद को जोड़ रखा हूं। श्लोक आपको यही बताने की कोशिश करता है कि आप पैर नहीं हो, आप सर नहीं हो, आप आंख नहीं हो। जब कहते हो कि मैं दो चीजों से बनी हुई चीज है, एक शरीर है, शरीर के अलग अलग पार्ट्स हैं, पर अगर मैं शरीर ही हूं तो फिर ये डेड बॉडी क्या है? क्यों लोग उसको जला देते हैं? क्यों लोग उसको कब्र में डाल देते हैं? मैं तो मैं हूं, फिर क्यों कहते हैं कि ये डेड बॉडी है और ये लिविंग बींग है? तो शरीर अगर मैं होता तो फिर कोई डेड बॉडी नहीं होता ना, फिर कोई मरा हुआ व्यक्ति तो नहीं दिखता ना। व्यक्ति तो होता है, शरीर होता है, पर तब भी हम उसको जला देते हैं, कब्र में डाल देते हैं। तो कुछ और है जो मैं कहता हूं, वो जो और है जो हमें नहीं दिखता, ही और शी इज द नोअर ऑफ दिस बॉडी, जो इसको यूज करता है, जिसे आप आत्मा कहते हो। ये दोनों की मिलावट में मेरा मैं हूं, और जो कुछ होता है मेरे शरीर में होता है, पर मुझे लगता है ऑल टोटल में मुझे लगता है कि मुझे दर्द होता है, मुझे सुख मिलता है, मुझे खुशी मिलती है। दो अलग अलग चीज है। शरीर में आपके घटनाएं घटती हैं, इंसिडेंट्स आर हैपनिंग इन योर बॉडी, पर समवन एल्स इज फीलिंग इट। इसीलिए आप देखेंगे जब आप बेहोशी में होते हैं, आपके शरीर में कुछ भी हो रहा हो तो आपको पता नहीं चलता। जब आपके ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया दे देता है, आपकी होश नहीं रहता है, कॉन्शसनेस नहीं रहता है, और बॉडी के साथ वो कुछ भी करे, चीर फाड़ काट पीट कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी हमें हिप्नोटाइज कर दिया जाता है। अगर आप हिप्नोटाइज्ड हैं, सम्मोहित हैं, तो भी आपके साथ क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। और हिप्नोटिज्म बहुत सारे कारणों से होते हैं। कभी कभी हमें बचपन से ऐसे बना दिया जाता है, हमारे माइंड को ऐसे सेट कर दिया जाता है कि हम वही मान बैठते हैं। जैसे घोष्ट नाम का कोई चीज कभी होता नहीं है, पर करोड़ों लोग आपको दावा करेंगे कि वो भूत देखते हैं। मतलब नहीं है कि बात नहीं है, वो क्लेम करते हैं कि वो देखते हैं। यद्यपि भूत नाम का कोई चीज संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसके बावजूद भी करोड़ों लोग आपको कहेंगे कि भूत वो देखते हैं। इट्स ए सेट ऑफ माइंड, नथिंग एल्स। वो आपकी मन की अवस्था है। आपको एक छोटा इंसिडेंट बताते हैं। दुनिया में माना जाता है कि सिर्फ 3% सांप है, 3% स्नेक्स आर पॉइजनियस, जहरीले होते हैं। मतलब 97% जो सांप है वो जहरीले नहीं होते। पर कोई भी सांप काटे, मरने वाले लोग 20-25% हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए नहीं मरते हैं कि जहर है, इसीलिए कि उनको उनके माइंड सेट है कि सांप काटा तो जहर आ गया है, अब मैं बचूंगा नहीं। और उसका एक साइड इफेक्ट क्या होता है, भारत में आप देखेंगे बहुत सारे झाड़ फूंक करने वाले होते हैं जिनकी दुकानदारी खूब चलती है। आपको पता है झाड़ फूंक वालों की दुकानदारी क्यों चलती है? क्योंकि लोगों को पता है सांप काटने से आदमी मरता है। झाड़ फूंक वालों के पास ले जाओ, ले जाते हैं लोग, आदमी मरता नहीं है क्योंकि जहरीला सांप नहीं होता है हमेशा, तो वो जिंदा आ जाता है। झाड़ फूंक करने के कारण बचा।
सारा क्रेडिट जाता है झाड़ फूंक वालों को, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि सारे सांप जहरीले नहीं होते। और जो मर जाते हैं झाड़ फूंक करने के बावजूद, कहेंगे इसकी आस्था ठीक नहीं थी। अब मेडिकल भी जाए, आपको सांप काटा है, अगर वो पॉइजनस नहीं है तो भी आप मर जाते हैं, क्योंकि आपका ये मानना है कि सांप पॉइजनस है, उसके काटने से मर जाता है आदमी। बहुत सारे लोग इसीलिए मर जाते हैं बिना जहर आए शरीर में, कि उनको लगता है कि मरना होता है। बहुत सारे लोग एक्सीडेंट हो रहा देख करके खुद गाड़ी चला रहे हैं, पर उनको लग रहा है सामने गाड़ी आ रही है, उतने ही उनका हार्ट अटैक होता है, क्योंकि उनका मानना है कि गाड़ी सामने आकर टकराते ही आदमी मर जाता है। वो बाद में पता चला, जब वो पानी छिड़काकर उसको उठाया, बोले मैं कहां हूं, मैं जिंदा हूं। हां तू जिंदा है, पर एक्सीडेंट तो हुआ था, पर तू बच गया है। उसको यकीन नहीं हो रहा है कि मैं बचा हूं, जिंदा हूं मैं, क्योंकि ये हम मान, ये हमारी सम्मोहन, हम वी आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज बाई ए थॉट, बाई ए न्यूज और समथिंग, कि कुछ होने से कुछ होता है। मतलब आपके शरीर में दर्द नहीं है तो भी आपको दर्द होगा, अगर आप हिप्नोटाइज्ड हैं और दर्द हो रहा हो तो भी नहीं होगा, तो आपको फील नहीं होगा अगर आप बेहोशी में या हिप्नोटाइज्ड हैं। इसका मतलब शरीर में जो कुछ हो रहा है वो हमेशा आपके पास रियल मैसेज नहीं जाता है। दर्द शरीर में हो रहा है तो भी आपको फील नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ देयर आर सर्टन रीजंस। दर्द नहीं है तो भी आपको फील हो रहा है कि आपको दर्द है, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। कभी कभी बच्चे जब खाना खाते होते हैं ना, तो बड़े आपस में बोल के पूछ लिया, भाई इसमें मिर्च है? तो आपने कह दिया जी हां बहुत मिर्च है। बच्चा अभी तक खा रहा होगा, आप कहेगा इतनी मिर्च डाली, अब मैं खा नहीं सकता, बहुत तीखा है। अभी तक वो खा रहा था, पर जैसे ही पता चला कि सब्जी में मिर्च है तो उसके मुंह जलने लगता है, फिर वो खाना छोड़ देता है। शरीर में होने वाली घटनाएं और उसको फील करने वाला, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब मैं कहता हूं कि मैं जवान हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं बुढ़ा जवान नहीं हूं, मेरा शरीर बच्चा था, मेरा शरीर जवान होता है, मेरा शरीर बुढ़ा होता है, मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं। जिस दिन ये रियलाइज हो जाए कि शरीर अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं, फिर लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है, वो बदलाव आने लगता है। क्षेत्रज्ञ, द नोअर ऑफ फील्ड, इज दैट वन हु नोज दैट दिस इज ए फील्ड ऑफ एक्टिविटी, दिस इज ए बॉडी। मैं खुद में, मेरी जो दो अलग अलग टुकड़े हैं, एक आत्मा एक शरीर, जब मैं ये एज ए विटनेस देखता हूं कि ये मेरा शरीर है, मैं अलग हूं। दूसरा है कि जब मैं खुद इन्वॉल्व होकर के देखता हूं कि मैं ही शरीर हूं। देर आर ऑलवेज टू वेज टू लुक एट समथिंग, किसी भी चीज को देखने की दो तरीके हैं। यू कैन सी इट एज ए विटनेस, यू कैन सी इट एज ए इन्वॉल्व पर्सन। आप खाना खाते हुए भी अपने आप को दो तरीके से एहसास कर सकते हैं। ये आप एहसास कर सकते हैं कि आप खाना खा रहे हैं, या आप ये भी एहसास कर सकते हैं कि मेरा शरीर खाना खा रहा है। आई एम जस्ट विटनेसिंग द टेकिंग द फूड, मैं खाना लेने की विटनेस हूं, साक्षी हूं। ये हो सकता है। कभी आप प्रैक्टिस करिए, आप बहुत तरह के मेडिटेशंस करते हैं, एक छोटी सी मेडिटेशन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ये एक एक्टिव मेडिटेशन है। आप चाहे तो चलते फिरते भी कर सकते हैं, पर आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप उस चेंज को फील कर सकते हैं। कभी फील करके देखिए कि बी ए विटनेस, एक साक्षी बनके जिंदगी को जीने की आदत डालिए। मैं देख रहा हूं, आई एम फीलिंग, आई एम रियलाइजिंग दैट माई बॉडी इज हेल्दी। मैं हेल्दी नहीं हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे शरीर में दर्द है। मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो। वो अवेयरनेस क्रिएट करिए अपने अंदर, हर वो छोटी चीज को जो आप करते हैं, उस करते हुए अपने आप को उसे थोड़ा अलग करके बोलने की, सोचने की कोशिश करिए, देखने की कोशिश करिए, रियलाइज करने की कोशिश करिए। जब आप खाना खा रहे होते हैं, आप ये रियलाइज करने की कोशिश करिए कि मेरा शरीर खाना खा रहा है। यू विल फील दैट, आप वो उस सेपरेशन को फील कर पाएंगे जब आप वो रियलाइज करें कि जब आप खाना खा रहे हैं, आप नहीं, आपका शरीर खा रहा होता है और उस खाने को आप देख रहे होते हैं, आप खुद के खाने को खुद रियलाइज करने कर रहे होते हैं। आपका शरीर नहा रहा होता है, आप उसको रियलाइज करें कि मेरा शरीर नहा रहा होता है। इट्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन, एक्टिव मेडिटेशन आप कर सकते हैं, बड़े इजीली कर सकते हैं। कभी मजाक मजाक में भी करके देखिएगा। चींटी भी काट रहा हो तो रियलाइज करिए कि चींटी मेरे शरीर को काट रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप चींटी काट रहे हैं तो आप बैठ के फील कर रहे हैं, उसको उठा नहीं फेंक रहे हैं। आप उस चींटी को उठाकर फेंकिए, बस विद दिस रियलाइजेशन दैट मेरा शरीर इस चींटी को उठाकर फेंक रहा है। जब आप उस प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन में चलेंगे, घर में होने वाली हर एक्टिविटीज को फील करिए, उसे दूर भागने की जरूरत नहीं है, अंधेरे में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा इट्स एक्टिव मेडिटेशन, आप चलते फिरते करते कर सकते हैं। जैसे ही आप शांत होंगे, जैसे ही आप मेडिटेशन करेंगे, आपके घर में हंगामा होगा, पति या पत्नी जोर से टीवी चलाएंगे, तीन तीन घंटे से बैठा रहता है ध्यान के नाम पर, घर में बच्चे तंग कर रहे हैं, वो टीवी का साउंड बढ़ाएगा। इसका अर्थ नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, पर ये फील करिए कि मेरे मन में गुस्सा आ रहा है, मन में गुस्सा आ रहा है। हो सकता है बच्चे ड्रम बजाए, उसको फील करिए कि बच्चे ड्रम बजा रहे हैं और उससे मेरे मन में दर्द हो रहा है। किसी को डिनाय करने का नहीं है, बस थोड़ा विटनेस बनने की आदत डालिए और दो तीन दिन देखिए, अगर बुरा लग भी रहा है उसको हाइड करने की जरूरत नहीं कि नहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा है बिकॉज आई एम मेडिटेटिंग, पर ये फील करिए कि मेरे मन को बुरा लग रहा है, इट्स माय माइंड हु फील्स बैड। अपने आप को अपने मन से, शरीर से अलग करके थोड़ी देर के लिए देखने की कोशिश करें, दो चार दिन पांच दिन करें, आपको खुद रियलाइज होगा कि आपके जीवन में कितने रूपांतर हो रहा है, बदलाव आ रहा है। क्योंकि इन रियलिटी आप एक नहीं है, आप दो चीजों के बने हुए हैं, एक शरीर जिसके अंदर मन है, बुद्धि है, ब्रेन है, माइंड है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, एंड एक आत्मा है। आप अनुभव को अलग करते जाएं, बॉडी में होने वाले एक्टिविटीज को अलग, बॉडी माइंड ऑल्सो पार्ट ऑफ ए बॉडी, रिमेंबर जब हम शरीर कहते हैं मन भी उसका एक सेटल पार्ट है। शरीर में मन में होने वाले एक्टिविटीज को अलग रखें, उसको फील करने वाले को अलग रखें, और जैसे जैसे आपके इस प्रैक्टिस में निखार आएगा, जैसे जैसे इसमें ये मांझा हुआ होगा, उतना आपके अंदर फर्क दिखने लगेगा, आपके खुद के अंदर वो फर्क दिखने लगेगा, आप उसको फील कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब मैंने कहा रियलाइज करना, तो आप इसका अर्थ नहीं कि आप चांट करते रहें, सोचते रहें कि अच्छा मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मेरे शरीर में हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट टू से, ये बोलने के लिए नहीं है, ये सोचने के लिए नहीं है। इट्स नॉट अबाउट टू थिंक अबाउट इन योर माइंड, जस्ट रियलाइज, फील इट। अगर आप बिना रियलाइज किए इसको रिपीट करते जाते हैं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, वो तो वैसे ही है जैसे लोग ओम जप करते रहते हैं, गायत्री जप करते रहते हैं, अंदर कुछ होता ही नहीं है। कोई चीज जब बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है ना, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व विद दैट, तो वो मैकेनिकल हो जाता है। जैसे तोता होता है ना, वो बोलता रहता है, जैसे रोबोट बोलता है, जैसे आपका जीपीएस बोलता है, सेंसलेस। तो अगर आप ऐसा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन बताया, इसका अर्थ नहीं कि आप उसको सोचें, उसके वो को बोलें, फिर तो वो रिपीटेशन हो जाएगा, फिर तो वो आपके तथाकथित सो कॉल्ड जपों की तरह हो जाएगा। अंदर कुछ हलचल नहीं, ऊपर जीव चलता रहता है, चलता रहता है, अंदर कुछ चेंजेस नहीं आते, नथिंग। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं, बोलते रहने से, सोचते रहने से चेंजेस नहीं आता है। रटने का कोई लाभ नहीं होता है, सिवाय कि आपकी मेमोरी हो अच्छी हो जाए, पता नहीं। उल्टा रटने से उसका जो मीनिंग है वो अपना टेस्ट खो देता है, वो मीनिंगलेस हो जाता है। अब देखिए, भारत में आप किसी को भी पूछिए, किसान से लेकर के अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे लोग तक, सब जानते हैं मैं आत्मा हूं, ये शरीर मिथ्या है, झूठ है, ये संसार झूठ है, मिथ्या है, मैं आत्मा हूं। और हजारों लाखों सालों से हम जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा मरती नहीं है, पैदा नहीं होती है, ये भी हम जानते हैं। शरीर मरता है, पैदा होता है, ये भी हम जानते हैं। बिना सीखे, बिना बताए ये हम जानते हैं, हर भारतीय वो जानता है। और जो जानता है कि आत्मा मरती नहीं है, उसको तो कभी डर नहीं होना चाहिए ना भाई, डर तो मौत से होता है, उसे तो कोई अपमान होना ही नहीं चाहिए ना, अपमान तो शरीर में होता है, आत्मा को क्या अपमान होता है, आत्मा कहां मरती है। तो हम आत्मवादी देश थे, हैं भी, जहां आत्मा का महत्व बहुत ज्यादा है, जहां हर बच्चे बच्चे को पता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। पर हुआ क्या, हम हजारों सालों से गुलाम हुए, जो भी आता है हमें गुलाम बना लेता था। गुलाम कौन बनता है, जो कमजोर होता है, जो डरपोक होता है, जो कावड़ होता है, जो लड़ नहीं सकता, जिसके लड़ने में उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि डर डर के लड़ता है, मरने का डर सताता है, भागता है, तो गुलामी बनने को सरेंडर कर जाता है। एक आत्मवादी देश, आत्मा में अजर अमर आत्मा वाला हूं मानने वाला देश हजारों सालों से गुलाम क्यों रहा, बिकॉज वी नेवर रियलाइज्ड इट कि मैं आत्मा हूं। हमने सिर्फ सुना है, पढ़ा है, और हमने रट लिया है, इसीलिए क्योंकि जीवन में कहीं वो उतरा नहीं है, इसीलिए हमारी वो जो सो कॉल्ड मैं आत्मा हूं का जो थ्योरी है वो इतना रिपीटेटिव है, इतना जप टाइप का है, अंदर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए हम हमेशा गुलाम रहे। यद्यपि कि हम मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, शरीर तो मरता है, क्या फर्क पड़ता है। और आज भी इवन इन इंडिपेंडेंट इंडिया मोस्ट ऑफ पीपल आर डोंट फील देयर इंडिपेंडेंसी, क्योंकि इंडिपेंडेंसी की फीलिंग आएगी जब आप नीडर होंगे, आप किसी को केयर नहीं करेंगे, क्योंकि आप, और वो कब आता है, खास करके जो आत्मज्ञानी है उसके लिए तो वो उसका पहला डेफिनेशन है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ही इज ए फियरलेस पर्सन। वो फियरलेसनेस फिर हमारे में आता क्यों नहीं है, क्योंकि सचमुच हम रियलाइज नहीं करते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं सिर्फ रटा रटाया हूं। मुझे किसी ने सिखाया, किसी ने बोला, कहीं से पढ़ा, उसको मैंने रट लिया, याद कर लिया, अच्छा लगा और मैं उसको यूज करता हूं। इसीलिए बी केयरफुल अबाउट इट। जब आपको कहते हैं कि आप मेडिटेट करो, एक छोटी सी हल्की सी, उसका अर्थ नहीं कि आप उसको जपो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में बोलो। अच्छा नहीं, मैं ये मान रहा हूं कि तुम जो डिस्टर्ब कर रहे हो वो मेरा शरीर को बुरा लग रहा है, ऐसा बोल के सोच के समझ के कुछ नहीं होने वाला। इफ यू कैन रियलाइज इट एंड प्रैक्टिस टू रियलाइज इट, देन यू फील द डिफरेंस। कि क्षेत्र अलग है, फील्ड अलग है, नोअर ऑफ फील्ड इज समवन एल्स। अगला श्लोक एक लेते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, सही बोलेंगे जोर से, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानम् मतं मम, यत्तज्ज्ञानम् मतं मम। हे भरत वंश के संतान, सायन ऑफ भरत, क्योंकि जो अर्जुन पांडव वगैरह है उनका जो मूल, जो जिस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं वो भरत डायनेस्टी। यू शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑल्सो द नोअर ऑफ नोअर इन ऑल बॉडीज। एंड टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी एंड इट्स ओनर इज कॉल्ड नॉलेज, दैट इज माई ओपिनियन। कृष्ण कहते हैं कि एक तो शरीर को, शरीर है जो बॉडी है, जो 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 फील्ड है जिसमें एक्टिविटीज होती है, और उस शरीर को समझने वाला, जानने वाला, फील करने वाला एक दूसरा है जिसे हम आत्मा कहते हैं, इंडिविजुअल बींग कहते हैं। पर वहां एक तीसरा तत्व भी है। जो इंडिविजुअल बींग है वो अपने शरीर में होने वाली चीजों को तो जानता है, अपने शरीर को तो जानता है, पर दूसरों के बारे में नहीं जानता। देयर इज ए थर्ड एंटिटी जिसे हम सुप्रीम बींग कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जो सबके शरीर के अंदर है, सबके शरीर को समझता है। एक तो किसान है जो अपने खेत का किसान है, और एक राजा है राज्य का जो सारी खेतें उसकी हैं। हर किसान का अपना अपना खेत है, पर आफ्टर ऑल सारे खेत जो है वो राजा का है। इस दुनिया में करोड़ों तरह के प्राणी हैं, मिलियंस टाइप ऑफ स्पाइसेस हैं, और हर टाइप स्पाइस में कितने तरह के, कितने बिलियंस बिलियन सब हैं। सिर्फ ह्यूमन बीइंग जो है इसी एक प्लानेट पर 700 करोड़ करीब हैं, 700 करोड़ करीब सिर्फ ह्यूमन बीइंग की स्पाइस है, वो सिर्फ इन दिस सिंगल प्लानेट। और भी अलग अलग स्पाइसेस हैं। तो जितने तरह के शरीर हैं, उस शरीर के अंदर एक शरीर को समझने वाला एक क्षेत्रज्ञ, नोअर ऑफ फील्ड भी रहता है, कॉन्शसनेस आत्मा रहती है, पर वहां एक दूसरी चीज भी रहती है, एक तीसरी चीज, जो तीसरी एंटिटी है संसार की, वो है परमात्मा, जो सभी शरीरों के अंदर रहता है, जो सभी शरीरों को समझता है। द डे यू रियलाइज योर सेल्फ एज द सोल इनसाइड दिस बॉडी, द सेम डे यू विल रियलाइज द सेम आत्मा इज इन एवरी वंस बॉडी। जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि मेरे अंदर एक आत्मा है, चेतना है, उसी दिन आपको समझ में आ जाएगा कि संसार के हर उस जीव के अंदर, जो लिविंग बींग के अंदर भी एक चेतना है और वो मेरे जैसी है। सबके अंदर अपनी अपनी इंडिविजुअल बींग है, पर एक परमात्मा जो उस इंडिविजुअल बींग के अंदर भी है, उसके बारे में हम कल नेक्स्ट संडे को चर्चा करेंगे। वो परमात्मा जो हमसे दूर नहीं है, वो ऐसा नहीं कि वो मंदिर में मिलता है या किसी खास पूजा घर में, खास पवित्र स्थान पर मिलता है। वो मेरे अंदर, मेरे बाहर, मेरे दुश्मन के अंदर, मेरे अच्छे लोगों के अंदर, बुरे लोगों के अंदर, गंदे पानी में, अच्छे पानी में, मेरे अंदर, आपके अंदर, सब जगह है। और वो सभी शरीरों को समझने वाला है। उसको हम अगली बार समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप बहुत संख्या में आए गीता के तिरुवे, घर में चाहें तो आपके पास गीता होगी तो पढ़ने की भी कोशिश करें। धन्यवाद।